जी बिस्मिल्लाह कीजिए प्लीज।
जी सर, सर एक सेकेंड। जी सर, मेरा थोड़ा सा सवाल तवील है, तो आपकी इजाजत हो।
हाँ हाँ
जी सर, जैसे कि आयत है कुरानी से जब हम मतलब उनको पढ़ते हैं तो समझ आता है कि जितने भी मौजज़े नबियों या रसूलों ने किया वो उस वक्त और हालात की जरूरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा में हम देखते हैं कि उन्होंने तमाम हालात और वाकयात जो दरपेश आए उसको बिल्कुल एक आम इंसान की तरह फेस किया और डील किया और हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की। जबकि बुजुर्गान दीन के वाकयात जब हम पढ़ते हैं तो करामात के हवाले से भरे हुए होते हैं। तो सर, क्योंकि करामात आम इंसान की समझ और पहन से मारवा है, तो सर ये फर्क नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा मुझे कंफ्यूज करता है इसके बारे में कुछ।
कोई बात नहीं, मैं ये दो चीजें वाजे कर देता हूँ कि मौजजा किसे कहते हैं और करामत क्या होती है। लौह कलम में ये पूरा चैप्टर है कि मौजजा क्या है, करामत क्या है, और एक और चीज उन्होंने साथ में इसके कपल कर दी है, वो है इस्तदराज।
इस्तदराज,
अब इस्तदराज का लुगवी मतलब आप जादू टूना ले ले।
जी सर।
ठीक है, अब होता ये है कि अल्लाह ने ये सलाहियतें हर इंसान को अता की हैं। वो सलाहियतों का इस्तेमाल जो आम सतह से ऊपर किया जाता है, अगर वो अपने जाती मफाद में हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हो, तखरीब के लिए हो, तो उसको इस्तदराज कहते हैं। और जब यही सलाहियतें लाशौरी सतह पे इल्मे नबुवत की रोशनी में दूसरों के भले के लिए की जाएं या वो हो जाएं, क्योंकि लाशौरी होता है, लिहाजा जरूरी नहीं कि उसने शौरी तौर पे किया हो, तो उसको करामत कहते हैं। अब मौजजा जो है वो भी इल्मे नबुवत के जेरे असर होता है, और मौजजात की कहानी ये है कि कुरान में 26 अंबिया कराम का तज़करा है, इल्मे नबुवत के 40 बाब हैं। क्या कहा मैंने? इल्मे नबुवत के 40 बाब हैं। तो ये हर मौजजा दर हकीकत इल्मे नबुवत का एक चैप्टर है। मिसाल,
ये रिपीट करें।
जी, मैंने कहा कि हर मौजजा असल में इल्मे नबुवत के किसी चैप्टर का अमली डेमोन्स्ट्रेशन है, अमली मुजाहिरा है, डिस्प्ले किया। मसलन हजरत ईसा ने गंजे के सर पे हाथ फेरा और उसके बाल हो गए, ये मौजजा कहलाता है।
जी सर।
अब ये इल्मे नबुवत के जेरे असर उन्होंने सिफते रहीमी का इस्तेमाल किया। अब बिना नाबीना की आंखों पे हाथ फेरा और उसको मादरजाद नाबीना, जो कि पैदाइशी नाबीना था, उसको बिनाई अता कर दी बगैर किसी मादी वसीले के। तो ये भी मसीहाई का ये फन जो है, ये भी इल्मे नबुवत का एक चैप्टर है। फिर उन्होंने तीसरा मौजजा ये किया कि परिंदे बनाए, मट्टी से परिंदा बनाया। आपको पता है कौन सा परिंदा बनाया था?
नहीं सर, ये नहीं पता।
चमगादड़ बनाई थी और उसमें जब फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। अब मुझे बताइए कि ये क्या था? ये भी इल्मे नबुवत का एक चैप्टर है। ठीक है, इंसान को ये वसफ अता किया गया है। अब हजरत ईसा ने इसे किसी के अपने मफाद के लिए नहीं इस्तेमाल किया, अल्लाह वास्ते किया, तो ये मौजजा इस सेंस में कहला रहा है, क्योंकि इल्मे नबुवत के जेरे असर खारक के आदत, क्या लफ्ज बोला, आदत से हटकर एक चीज, आदत का मतलब जो आम रूटीन है, उनसे हटकर एक चीज हो रही है, इसको हम मौजजा कह रहे हैं। मोजज़े के पीछे जो साइंस है वो ये कि भाई वो इल्म नबूवत के ज़ेर असर होता है। इल्म नबूवत क्या है कि वो इल्म जो अल्लाह रब्बे करीम इंसान को खुद अता फरमाता है। ठीक हो गया यहाँ तक?
जी सर।
अब इसी तरह हजरत यूसुफ का है कि वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे, तावीलुल अहादीस। हजरत यूसुफ ने देखे ना, वैसे तो वो कुएं में फेंके गए, अल्लाह ने बचा लिया, उसके बाद उन्हें गुलाम बनाया गया, वो अजीज मिसर बन गए। गौर करें
जी सर।
क्या ये मौजा नहीं है? लेकिन ये चूंकि रूटीन में हो सकता है या हमने इसे मौजा नहीं समझा। असल बात यह है कि उन्होंने ख्वाबों की ताबीर का इल्म, ये भी इल्म नबूवत का एक चैप्टर है। जब कोई रूहानी मुसाफर ख्वाब का इल्म सीखना चाहता है, ख्वाब की ताबीर का इल्म सीखना चाहता है, तो उसको तावीलुल अहादीस का इल्म हजरत यूसुफ से पढ़ना पड़ता है। कोई ज्यादा ही बड़ी बात है? मैंने कहा जब कोई बंदा ताबीर का इल्म सीखना चाहता है तो जो सचमुच ख्वाब का इल्म रखते हैं उनको हजरत यूसुफ की निस्बत से ये इल्म मुंतकिल होता है, उनको गोया हजरत यूसुफ से सीखना पड़ता है ये इल्म। बात वाजे हो गई?
जी सर।
यानी कि हर नबी, हाँ जी जाहिर है रूहानी तौर पे होता है क्योंकि ये सारा लाशऊर का निजाम है ना।
अब समझ आ रही है।
देखे ना, एक बंदा जो दुनिया से चला गया वो कहाँ है? अब हमने अभी हजरत यूसुफ का नाम लिया तो हजरत यूसुफ हमारे और आपके अंदर है। हम कहते हैं वो आलम अरवाह में है, हम कहते हैं वो आलम एराफ में है। ये आलम एराफ या आलम अरवाह कहाँ है? ये मेरे और आपके अंदर ही तो है। अभी मैंने हजरत ईसा का तस्करा किया तो हजरत ईसा आपको एक महसूस हुए ना, एक बंदा महसूस हुआ या नहीं हुआ?
जी बिल्कुल।
तो कहाँ हैं वो? वो
हमारे अंदर
हैं। अब हमें राबता नहीं करना आए, हम उस तरफ मतवजो ना हो। अल्लाह ने तो ये सलाहियत अता की हुई है हमें। तो ये बात वाज़े हो गई कि मौजज़ा क्या है। इल्मे नबूवत के ज़ेरे असर अंबिया कराम ने इल्मे नबूवत को पढ़ाने को जो भी अमली डिमॉन्स्ट्रेशन किए, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो की, उनको हम मौजज़ात कहते हैं।
जी सर।
और वो किससे सरज़द होते हैं? अंबिया कराम। ठीक हो गया जी
सर।
और करामात औलिया कराम से सरजद होती हैं और वो भी इल्मे नबूवत के जेरे असर होती हैं। लेकिन ये जादू टूना जो है, अब हजरत मूसा के किस्से पे आ जाइए। हजरत मूसा जब फिरौन के सामने गए तो उसने अपने जादूगरों को आवाज दी, उनको बुलाया और कहा इसको डराओ। उन्होंने अपनी रस्सियां, अपनी छड़ियां, अपनी लाठियां गिरा दी जमीन पे और वो सांप बन गए, अजदहा बन गए। ठीक है
जी, जी जी बिल्कुल।
अब हजरत मूसा घबरा गए और अल्लाह ने कहा कि ये डरो मत, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो आसा, उसको गिरा दो, जमीन पे डाल दो, हल्का कर दो, यानी के जमीन पे गिरा दो, डाल दो। उन्होंने डाला, वो एक अजदहा बन गया
जी सर।
और वो बाकी सारे सांपों को खा गया, निगल गया बल्कि।
जी निगल गया।
ठीक हो गया। अब गौर करें कि जादूगरों ने काम किया, हजरत मूसा ने भी वही काम किया। फर्क वो जादू है, हजरत मूसा का किया हुआ काम मौजज़ा है। फर्क समझ आ रहा है आपको? अब जादूगरों ने हजरत मूसा को डराने के लिए किया, फिरौन को खुश करने के लिए किया, जाती लालच और इनाम के चक्कर में किया, और हजरत मूसा ने अल्लाह वास्ते किया। जादूगरों को पता था कि ये इसका इल्म हमारे इल्म से सुपीरियर है, उन्हें पता चल गया ना, उन्हें ये भी पता चल गया कि ये तो अल्लाह वाला इल्म है, तो उन्होंने कहा कि हम मूसा पे ईमान लाए। उस पे फिरौन नाराज हो गया, क्या कहा कि मैं तुम्हें ऑपोजिट साइड से एक हाथ और एक टांग काट दूंगा। गौर कर, यानी कैसी अजीब सजा तजवीज कर रहा है। लेकिन वो जादूगरों को पता चल गया कि ये नबी है, ये अल्लाह वाला है। हमारा इस इल्म जो है वो इस्तदराज है, और इसका इल्म जो है वो इल्म नबूवत की इल्म नबूवत है, इसको अल्लाह ने अता किया इल्म, और इसका इल्म हमारे अलूम पे हावी है। अब यहां से देखिए कितना बड़ा मसला हल हो सकता है अगर हम तवज्जो करें। ये जो हमारे मुआशरे में जादू टूने का चक्कर चला हुआ है, जब हमारे पास कुरान जैसा इल्म है तो हम पे ये अलूम असर कर सकते हैं?
नहीं सर,
लॉजिकली तो बात यही बनती है कि नहीं। तो ये आपने जो सवाल किया कि मौजजा क्या है, करामत क्या है, तो मैंने इजाफी तौर पे आपको इस्तदराज यानी जादू का
जी सर
कुरान से ही अर्ज कर दिया कि देखें एक ही काम है, ताकतें एक ही जैसी हैं, दोनों ताकतें। अब जादूगरों ने अगर छड़ी को सांप बना दिया या रस्सी को सांप बना दिया तो मूसा ने भी तो यही किया
जी जी।
लेकिन पीछे मोटिव का फर्क देखा आपने
जी? बहुत फर्क सर, बहुत ज्यादा।
एक बात जो है वो अल्लाह वास्ते हो रही है, और दूसरी बात जो है वो अपने मफाद की खातर हो रही है।
मफाद
ठीक हो गया?
और सर जी सर, और सर आपने जो बताया कि करामात जो है वो उनकी हदीस नबी की या इल्म नबी की रोशनी
है, इल्म नबुवत यानी वो इल्म जो अंबिया कराम को हासिल हुआ वो उन्होंने अपने शागिर्दों को मुंतकिल किया। अब देखे ना, जो अलूम हजूर अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुए, अब उन्होंने जो मोजजात हजूर अलैहिस्सलाम से मतलब सरजद हुए या उन्होंने जो करके दिखाए, मसलन मोजजा शकुल कमर
जी सर।
अब ये बात, ये इल्म नबूवत का वो चैप्टर है जो बाकी किसी नबी ने नहीं करके दिखाया। यानी इस मादी जोन के यानी हमारे कुर्रे फिजाई से बाहर चांद के दो टुकड़े करके दिखाए, मौजा शक्ल कमर कहते हैं
जी सर।
लेकिन एक बात समझ रखें, इस किस्म की करामात और मौजजे देखकर लोग भाग जाते हैं, ईमान नहीं लाते, खौफजदा हो जाते
जी।
लेकिन अल्लाह ने उनसे इसलिए करवाया क्योंकि ये वो तो एक इल्म पढ़ा रहे हैं, अंबिया कराम नौ इंसानी को एक इल्म पढ़ा रहे हैं। कौन सा इल्म? जो अल्लाह ने उनको अता किया। ठीक हो गया? अब नौ इंसानी उनके अलूम की के हसूल की काविश करने के बजाय उनकी पूजा में लग गई। मसलन अब मसीहाई का इल्म जो है ये हजरत ईसा ने डिस्प्ले किया, अब ईसाइत ने उनके इस मोजज़े को अपना कर रूहानी सतह पे बुलंद होकर वसाइल के बगैर शिफा याबी के बजाय क्या किया? मादी जराए के जरिए लोगों को ट्रीट करना सीख शुरू किया, और ये ट्रीटमेंट जो है, ये इलाज जो है, आज किस दर्जे पहुंच गया और क्या क्या मकसद है? खाल उतार रहे हैं लोगों की
जी, ऐसा ही है।
मतलब अगर सीटी स्कैन आपने करना सीख लिया तो आप इसलिए नहीं सीटी स्कैन कर रहे कि भाई इस बंदे को फायदा हो जाए, वो आपने इसलिए किया कि मेरी जेब भर जाए
जी सर, ऐसा ही।
अब अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ये क्या है? ये डायग्नोस्टिक्स है। इलाज क्या है? कि उसने कागज पे चार दवाइयों के नाम लिख दिए, ये इलाज हो गया। वो तो शिफा कहां गई? शिफा जो है वो मरीज के यकीन से आई, अगर किसी को आ जाती है। क्योंकि मरीज ने कहा मैंने इसको इतनी फीस दी है, इतने हजार रुपए दिए हैं, इतने लाख रुपए दिए हैं, इसने ऐसी कीमती दवाइयां दी हैं, मुझे ठीक हो जाना चाहिए। उसके शऊर में शिफायाबी का, उसके अपने यकीन की वजह से वो शिफायाब हो जाता है।
जी ऐसा ही है।
लेकिन वो जो हजरत ईसा की मसीहाई का इल्म था है? वो किसी ने काबिले तना ही नहीं समझा, उसको तवज्जो ही नहीं दी। हाँ या नहीं?
बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो सर ये भी एक तरह से वो सच्ची बात है, इस तरह
के शाबाश, बिल्कुल दुरुस्त नतीजा आपने अखज किया कि ये सब इस्तदराज में चला गया। इल्म वही है
जी। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन खुल गया सर,
अल्लाह का शुक्र।
जज़ाकअल्लाह सर,
आपका शुक्रिया जी। जी जी
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा
फरमाइए।
इफ आवर फिजिकल बॉडी टर्न टू सैंड, व्हाट विल हैपन टू आवर सोल? विल वी रीबॉर्न?
पार्डन, आई कुडंट अंडरस्टैंड यू। What if our body is what?
Wait, our physical body turned to sand. What will happen to our soul? Will we reborn?
नहीं, reborn क्या? मैं नहीं समझा। देखें आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी physical body क्या करे?
To sand.
नहीं समझ आया मुझे। अगर हमारी फिजिकल बॉडी क्या करे? पख्तों के हुआ या? देखे ना, नहीं मुझे बात क्लियर नहीं हो रही कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। जी वालेकुम।
सॉरी मैं आई वाज टॉक लेटर। सर जी नहीं, समरीन का सवाल ये है कि हमारी जो बॉडी है वो तो इस दुनिया में वो दफन होके मिट्टी बन जाती है।
ठीक,
तो हम लोगों का जो रूह है, जो सोल है, वो जब ऊपर चली जाती है, मुंतकिल हो जाती है, क्या इसमें हम लोगों का ये कह सकते हैं कि रीबॉर्न हो सकते हैं या दोबारा जन्म ले सकते हैं?
नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये रीबर्थ के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हिंदुओं का फलसफा आवागौन मान लीजिए, क्योंकि ये हिंदुआना फिलॉसफी है कि बंदा दुनिया में रीबर्थ होती है उसकी और रीबॉर्न होता है वो। ये है आवागौन की फिलॉसफी। ठीक हो गया। अब फिजिकल बॉडी जब डिस्कार्ड होती है, पहले तो इसको आराम से तहम्मल से समझ लीजिए कि असल में हमारी जात है। जात जिस एनर्जी से काम लेती है उसको रूह कहते हैं। रूह ने एक मीडियम बनाया जिसका नाम जहन है या नस्मा कह लीजिए। अब असल में क्या होता है कि जब ये नस्मा यानी हमारा जहन इस फिजिकल बॉडी को चला रहा है, हमारा इस फिजिकल बॉडी के अंदर असल इंसान कौन है? जो कि जात, रूह और नस्मा का मुरक्कब है। क्या कहा मैंने कि इस फिजिकल बॉडी को कौन चला रहा है? आपका दिल धड़क रहा है ना, तो कौन धड़का रहा है? आपकी सांस चल रही है तो कौन चला रहा है? आप चला रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिजिकल बॉडी जो है ये एक लिबास है। फिजिकल बॉडी एक ड्रेसअप है, एक रोब है। जो असल इंसान ने पहना हुआ, जैसे कि हमने ये कपड़े पहने हुए इस मादि जिस्म के ऊपर, इसी तरह वो जो जात है, वो जो रूह है, वो जो नस्मा है, ये तीनों का कम्बिनेशन जो असल इंसान बनाया है हमारे अंदर, जो इस बॉडी के अंदर रहता है, वो जब क्विट कर जाता है तो बॉडी पैरिश करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको संभालने वाली एजेंसी कौन है? आपका शऊर, आपका जहन। जब आप यहां से शिफ्ट कर जाते हैं तो आप जिस जोन में जाते हैं उसका नाम कुरान ने एराफ बताया। वो एराफ कहीं दूर नहीं है, वो लतीफ रोशनियों की दुनिया है। यूं समझें कि जमीन से आप 200 मील ऊपर जाएं तो वो जो रोशनी है वहां पे लताफत है, उस लताफत वाली रोशनियों से बने हुए जोन का नाम एराफ है। वहां क्या है? असल में हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये जो रीबर्थ का चक्कर है वो असल में क्या है कि अल्लाह रब्बे करीम जब हमारा रिकॉर्ड रिवाइव करेगा, रिकॉर्ड जो कुछ हमने किया है वो हमारे सामने आ जाएगा।
अच्छा, ओके।
जो कुछ हमने यहाँ दुनिया में किया, देखिए ना, अब दुनिया में क्यों भेजा? देखिए, अल्लाह ने आपको अपना खलीफा नामजद किया, इन्नी जाइलो फिल अर्द खलीफा, ठीक हो गया। अब आपको ये 17 मराहिल से गुजारा गया, आप अल्लाह के जहन से लोहे महफूज पे आए, वहां से आलम में राफ बरजख में आए, वहां से नीचे आलम में तमसाल में आए, फिर वहां से नीचे आलम में नासूत में आए, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए। अब यहाँ पे ये सारी जिंदगी के तजर्बात समेट कर आप वापस आलम में इराफ से होते हुए वापस अल्लाह के जहन तक जाएंगे। फर्क क्या हुआ? ये सारा निजाम किस लिए हुआ? कि आपको नियाबत के फराइज सर अंजाम देने, आपको ये सारे मराहिल से गुजारा ताकि आप अल्लाह के निजाम को अच्छी तरह समझ लें। निचली तरीन सतह पे भेज के तो फिर आपको ऊपर उठाया गया, ठीक हो गया। अब जैसे आप बचपन से गुजर के लड़कपन में आए, लड़कपन से निकलकर आप नौजवानी में दाखिल हुए, फिर जवानी में आए, फिर उधेड़ उम्री में जाएंगे, फिर बुढ़ापे में आएंगे, ठीक है। अब इस वक्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको अपना बचपन का 5 साल का 7 साल का उम्र याद है, तो वो रिकॉर्ड आपके अंदर मौजूद है या नहीं?
जी, यस सर।
जब आप पैदा हुए तो क्या आप इतना शऊर रखते थे जितना अब रखते हैं?
नो।
क्या हुआ कि ओवर दीज 20 और 30 इयर्स जो भी आपकी उम्र है, आपने वो वक्त जो यहाँ गुजारा उसमें उस दिन से जिस दिन आप पैदा हुए अब तक देखें कितना शऊर में इजाफा हुआ। आप हैं तो वही वही इंसान जो पैदा हुआ, वो इंसान तो नहीं बदला, उसका नाम रख दिया समरीन।
अच्छा।
अब इसी तरह देखे ना, जब मैं पैदा हुआ तो मैं एक इंसान, यानी असल इंसान जो मेरे अंदर था, उसने एक मादी जिस्म अपना लिया, मेरे अम्मा अब्बा ने उसका नाम मकसूद रख दिया। अब मैं आज भी वही मकसूद हूं, लेकिन क्या हुआ, मेरे तजुर्बात में जिस किस्म के हालात से, जिस किस्म की सिचुएशन से मुझे गुजारा गया, उससे मैंने क्या किया, कुछ सीखा। अगर मैंने सीखा तो ये विजडम मेरे साथ जाएगी ना।
अच्छा,
ठीक हो गया। तो
जी
हमारी बर्थ, यहां से हम फौत हुए तो आलम इराफ में पैदा हुए, वहां फौत होंगे तो आलम में अरवाह में चले जाएंगे, वहां से वफात पाके आगे आलम हशर यौमुल कयामा में दाखिल हो जाएंगे, वहां से जब यौमुल कयामा यानी जब कोई चीज कायम कर दी जाएगी, क्या चीज कायम कर दी जाएगी, उस वक्त रूह के हवास तारी किए जाएंगे, और फिर वो रूह के हवास जो हैं उनके साथ हम हशर नशर तक जाएंगे। تو گویا یہ بالفاظ دیگر کیا ہوا کہ ہم عالم میں ناسوت میں فوت ہوئے تو ہماری برتھ کہاں ہوئی؟ عراف میں. عراف میں فوت ہوئے تو کہاں؟ یوم القیامہ میں، یعنی اس دور میں یا اس زون میں جہاں پہ روح کے حواس قائم کیے گئے. پھر وہاں سے ہم آگے گزرے تو ظاہر ہے پچھلا درجہ چھوڑنا پڑا نا، اس چھوڑنے کو فوت ہونا ہم کہتے ہیں.
جی سر،
واضح ہو گئی بات؟ تو اس سینس میں تو واقعی ری برتھ ہوئی، کیونکہ جب آپ یہاں فوت ہوئے تو آپ دوسرے زون میں پیدا ہوئے، اس سینس میں ری برتھ ہے. لیکن یہ دنیا میں ری برتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے قرآن میں.
اوکے سر جی،
اب واضح ہو گئی بات؟
یس سر، تھینک یو سو مچ.
موسٹ ویلکم. جی اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال ہے، شفا کا تعلق کیا خیالات سے، اور ذہن کی شفا بخش علاج سے کیسا فائدہ اٹھانا؟
اور کس سے؟ شفا یابی اور بیماری میں کیا فرق ہے؟ بیماری کہتے کسے ہیں؟ دیکھو ہمارے ذہن کا ایک ہی کنڈا ہے، آپ اس کو چاہے یقین کی تار پہ ڈال لیں یا بے یقینی کی تار پہ ڈال لیں. اب بیماری کی تار جب آپ نے پکڑی تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بیماری کی تار کو چھوڑ کے تو صحت کی تار پہ کنڈا ڈال لو. ذہن میں اگر آپ اس بات کو محسوس کریں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار لگ رہا ہے، میرے درد ہو رہا ہے، یہی کہتے ہیں نا. آپ اسے فرض کریں کہ آپ کو بہت کام ہے. کبھی ایسا سب کے ساتھ ہوا ہے کیا کہ آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں یار، لاؤ ایک پیراسیٹامول دو، میں کام پہلے کام نمٹا لوں، کیونکہ آپ کو فرصت نہیں ہے اس بیماری کے خیال کو اٹینڈ کرنے کی. تو کیا ہوتا ہے، یہ اکثر مردوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن دفتر جانا ضروری ہے، چلو ایک دوائی دے دو، یہ دے دو، گولی دے دو، پیراسیٹامول وغیرہ کھا کے وہ دفتر چلے جاتے ہیں. شام کو گھر آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، کہتے ہیں اٹھی آپ تو ٹھیک ہو. یہ تجربہ سب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اکثر تو ہے.
جی سر یہ اکثر ہے.
کیا مطلب ہوا؟ کہ اگر ہم اس کو توجہ دیتے ہیں تو بیماری لپٹ جاتی ہے. اور اگر آپ منع کر دیں کہ کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں تو کیا ہوگا؟ بیماری ختم. اب بیماری کیا ہے؟ حضور مرشد کریم نے کتاب روحانی علاج کے شروع میں ایک جملہ لکھا ہے، شک اور بے یقینی سے پیدا ہونے والی 200 بیماریوں کا علاج. کیا مطلب ہے؟ بیماری کس سے پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ یقین سے دور ہٹ جاتے ہیں. وہ یقین کا کنڈا جو ہے وہ صحت کے بجائے بیماری کی تار پہ جا پڑتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو اس کا گر عرض کر دیا کہ آپ سانس پورا لیں، پانی آرام آرام سے پئیں، کھانا چبا چبا کے کھائیں، انشاءاللہ کبھی ذہن میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ بیماری کو ریجیکٹ کر سکیں، رد کر سکیں. یہ ہے سارا صحت مندی کا اور شفا یابی کا قانون. پھر جب یہ صلاحیت آپ کے اندر اتنی بڑھ جائے کہ آپ دوسرے پہ اثر انداز ہو سکے تو آپ کہیں گے نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہیں آپ بالکل، تو اگلا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے یقین کی طاقت اس میں منتقل ہو جائے گی. وہ
منتقل ہو جائے گی.
ये है मसीहाई का असल राज, क्योंकि रूह तो बीमार नहीं होती ना जी।
रूह बीमार नहीं होती,
इंसान ज़हनी सता पे उलझता है और उस उलझाव की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन गौर करें, बहुत पढ़े लिखे बहुत काबिल लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं तो, लेकिन कानून तो सबकी टांग पकड़ता है, वो तो नहीं स्पेयर करता। कानून जो है, आप ये नहीं कह सकते कि जी वो जो बंदा सब जानता है जिसका, वो भी बीमार होते हैं। तो क्या वजह है? वजह ये कि वो ध्यान हट जाता है, वो कुंडा गलती से वहां पड़ जाता है उस पे। ठीक हो गया
जी सर, ठीक हो गया।
यानी ये सारा खेल जो है यकीन का, यकीन
यकीन का है।
अगर आपको यकीन है कि मैं सेहतमंद हूं तो कोई दुनिया की चीज आपको बीमार नहीं कर सकती, और अगर आपको यकीन है कि मैं बीमार हूं तो कोई ठीक नहीं कर सकता। वो जब आपके यकीन में ये बात आ जाती है कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, ये बड़ा काबिल है, इसका हाथ में शिफा है, इसने जो दवा दी है ये मेरे मुझे असर करेगी, आपके जहन में यकीन है, आप फौरन ठीक हो जाएंगे। ये सारा खेल किस चीज का हुआ?
यकीन का।
यकीन का, ज़हन की ताकत का। ठीक हो गया?
सही, ठीक हो गया। सर आपने जो अभी ये पूरा एक्सप्लेन किया है, इससे मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है ना सर। सर हमारी जो बॉडी है सर, वो वेयर एंड टेयर का शिकार तो रहती है ना विद एजिंग प्रोसेस, और वो तो उसको हम किस नजर से देखें सर?
बिल्कुल सही। अब बात यह है कि आप इस निजाम को समझें। नंबर एक, मतान इलाहीन, ये कुछ मुद्दत की खेल है। बॉडी का सारा सिस्टम अल्टीमेटली इसने वैनिश होना है, इसने पैरिश कर जाना है, हाँ या नहीं?
जी पैरिश, जी सर पैरिश कर जाना।
ठीक हो गया। अब वो ग्रेजुअली करता है या अचानक हार्ट बंद हो जाए, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, या ब्रेन हैमरेज हो गया, क्या मतलब है? वो जब आपने अंदर से डिसाइड कर लिया कि एनफ इज एनफ, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज, तो इस किस्म की, अब बाज लोग देखें 100 साल तक जिंदा रहते हैं, कम है लेकिन रहते हैं, ये हमारे मुशाहदे में है। अब इसी तरह बाज लोग जो हैं वो यंग एज में फौत हो जाते हैं। अब आ जाती है बात ये बॉडी की वियर टियर की। वियर टियर क्या है? ये हमारे शऊर की मशीन है जो इस बॉडी को बना रही है। ठीक हो गया। जब ये आपका शऊर डिसाइड करता है कि बस काफी हो गया, तो वियर टियर शुरू बढ़ जाती है। ठीक है, ये शऊर चूंकि देखे ना, उसे तो पता है ना, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लाशऊर में तो ये बात है कि हम अल्लाह के नायब हैं, और हमारी जात जो है वो रूह की एनर्जी से काम लेते हुए सारे जोनों का तजर्बा और इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह अपने पूरे निजाम में से गुजार रहा है उसको। अब हम चूंकि खो गए, हम अपने इस मादी जिस्म को ही असल इंसान मान बैठे हैं, तो सूरत हाल क्या बनी? हमारा ध्यान असल से हट गया। अब बुढ़ापे में जरूरी नहीं कि आप बीमार हो, आप सेहतमंदी के साथ भी बुढ़ापा गुजार सकते हैं। उसका मैंने आपको क्या हल बताया कि भी सांस जब तक है पूरा लो, पूरा एक्सहेल करो, पूरा इनहेल करो, पानी पियो तो मजे मजे से शराब होने के लिए, खाना खाओ तो चबा चबा के। ठीक हो गया। ये फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने का ये फार्मूला मैंने अर्ज कर दिया। हमारे बड़ों ने कहा वर्जिशें करो, क्या होता है एक उम्र के बाद वर्जिश करने को दिल ही नहीं करता, आप कहते हैं ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही, हाँ या नहीं?
जी ऐसा ही है।
लेकिन अगर आप सांस पूरा लेते रहेंगे तो वो आपको पता है कि मैं जब तक सांस पूरा ले रही हूँ मैं सेहतमंद रहूंगी, मेरे बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो पूरी होती रहेगी। जब वक्त आएगा तो आप सांस लेना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ रहना तो नहीं है भाई, 100 साल बाद सही लेकिन जाना तो है ना। लेकिन हमें खौफ आता है इसलिए अब खौफ का मरीज जो है वो ऊपर जाके क्या करेगा, वो डरा सहमा बैठा रहेगा कोने में। लेकिन अगर उसे पता है कि मैं एक मुसाफिर हूं और मैंने 8 मंजिलें गुजर के 9वीं पे आया और बाकी 8 मुझे वापस तय करनी है, तो वो तो खुशी खुशी गुजरता चला जाएगा। हाँ या नहीं?
बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल दुरुस्त, सही कह रहे हैं।
भाई बच्चा पैदा होता है, आप कहते हैं स्कूल जाना है, अब वो घर से निकलता है तो स्कूल जाता है ना, फिर स्कूल से निकलता है तो कॉलेज जाता है, फिर कॉलेज से निकलता है यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है तो कहीं काम धंधे से लग जाता है। अब ये पहले दिन तो काम धंधे पे नहीं जा सकता, ये भी नहीं हो सकता।
तो सर घर से निकला,
हाँ
एक्सपोज किया, एक्सपोजर है,
आप इसे एक्सपोजर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये इंतकाल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुआ। तो हम इन मराहिल को अपनी अमली जिंदगी में, मादी जिंदगी में जगह जगह देख रहे हैं, लेकिन जब इसको रूहानी सतह पे देखने की बारी आती है तो हमें फौतीदगी का गम पड़ जाता है।
जी सर ऐसे ही है।
हम कहते हैं हम फौत हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि दुनिया को तो मैं ही चला रहा हूँ। नहीं आप नहीं चला रहे, आपके पहले भी दुनिया चल रही थी, आपके बाद भी चलती रहेगी।
ये बिल्कुल गलत है जी सर, न्यूबॉर्न की माँ मर जाती है वो बच्चा पल जाता है।
गौर करें क्या मतलब, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना इन सारी बातों के बारे में, वो डिस्टॉर्टेड है, हमें उसको करेक्ट करना है। और जब ये कॉन्सेप्ट में बात बैठ गई कि अल्लाह ने मुझे अपना नायब बनाया है, मुझे उसका नायब बनने की अहलियत जो अता की है मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका उसका अपनी काबिलियत को बढ़ाना है। उसका आसान तरीन तरीका क्या अर्ज किया कि भाई आप अल्लाह की बात को समझने के अहल हो जाएं। अल्लाह की बात क्या है? कुरान अल्लाह की बात है
जी।
भाई वैसे तो अल्लाह रब्बे करीम हर बंदे के अंदर है, अल्लाह मियां हर बंदे से खुद मुखातिब होते हैं, ठीक है
जी।
लेकिन वो जाहिरी वसाइल में अल्लाह के कलाम को हम क्या कहेंगे कि हम जब अल्लाह के कलाम में दिलचस्पी लेंगे तो अल्लाह अंदर से हमें खुद ही गाइड करेगा ना, हमें फहम कौन अता करता है? अल्लाह। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने मतवज्जो रहना सीखना है, बाकी ये दुनिया का निज़ाम है, इसमें ऊंच नीच सब कुछ गुजरेगा। आप सेहतमंद भी होंगे, बीमार भी होंगे, बीमारी से भी इसीलिए गुजारा जाता है कि आपको अपने यकीन की ताकत का खेल समझ आ जाए।
सही कहा, बहुत अच्छी, थैंक यू सर।
वेलकम।
अस्सलामुअलैकुम सर जी।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर जी मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने हमारे जरूरत के हिसाब से और यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमें इस दुनिया में अता की हैं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, तो ये पैसे का कॉन्सेप्ट कब और क्यों आया?
जब हजरत आदम दुनिया में आए तो उनके पास कुछ बटवा था?
नहीं।
क्या मतलब हुआ? देखें शुरू में आज से ये 400-500 साल पहले पीछे चले जाएं मैक्सिमम, तो क्या था मतलब 2000 साल पहले तक, ठीक है, तकरीबन 2500 साल पहले तक क्या था, बार्टर सिस्टम था। फिर लोगों ने धात यानी सिक्के सोने को मयार बना लिया, एक्सचेंज का जरिया सोना करार पाया, जरे मुबादला यानी ये वो चीज़ है जिसके जरिए हम कुछ तबादला करते हैं अशिया का। अब यहाँ से क्या हुआ, धात किसकी ईजाद है? धात भी तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, मखलूक है। چاہے وہ سونا ہو چاہے ہیرے جواہرات ہوں, آپ نے ان کی نایابی کی وجہ سے ان کی قیمت لگا دی. اس کے بعد یہ آج سے کوئی 400-500 سال پہلے نوٹوں کا رواج آ گیا. کیا آیا کہ کسی نے پر نوٹ لکھا, اتنے سکے, اتنی اشرفیاں, سونے کے اتنے سکے, میں عند الطلب دوں گا. آج بھی آپ کے نوٹ پہ یہی لکھا ہے کہ بینک حاضہ, ٹھیک ہے, اس کو 100 روپیہ عند الطلب دے گا. نوٹ پہ دیکھیں یہی لکھا ہے کہ نہیں.
جی
یعنی روپیہ جو تھا وہ ایک کرنسی, یعنی ایک سکے کا نام ہے جس کو کاغذی شکل دے دی گئی. اور کیا یہ گیا کہ وہ پہلے جب شروع کیا گیا, جب یہ نوٹ چھپنے شروع ہوئے, تو اس کے پیچھے 100 روپے کے پیچھے 25 روپے کا سونا رکھا جاتا تھا. آج کل شاید 5 روپے کا سونا بھی نہیں رکھا ہوا پیچھے, بس نوٹ چھاپی جا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ انفلیشن ہے. اب کہانی کیا بنی کہ یہ پیسہ, روپیہ, پیسہ کس کی ایجاد ہوا؟ انسان کی. اگر اللہ ایجاد کرتا, اللہ اس کو آپ کی زندگی کا لازمی جز بنا دیتا, تو یہ درختوں پہ نوٹ لگتے, ہاں یا نہیں؟
بالکل جی.
اصل میں انسان نے اپنی سہولت کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے. اب وسائل کیا ہیں؟ وسائل سن لیجئے, جو اللہ نے سب کو وافر عطا کیے. کیا؟ ہوا, کیا؟ پانی, روشنی. روشنی میں آگے چاندنی اور دھوپ. یہ وسائل سب کے لیے دستیاب ہیں کہ نہیں؟ اب غور کریں کہ انہی سے سبزی بن رہی ہے, انہی سے نباتات بن رہے ہیں, اور انہی سے سبزیاں بن رہی ہیں, اور پھر انہی پہ جانور پل رہے ہیں. آپ جانور بھی کھا رہے ہیں, سبزی بھی کھا رہے ہیں, اور اس کے بعد معدنیات بھی کھا رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وسائل نہیں ہیں. وسائل اللہ نے سب کو دیے ہیں. یہ جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں, ہم ان کو وسائل کہہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟
جی جی سر جی.
تو اپنے ویژن کو انلارج کریں. اب انسانوں کے بنائے ہوئے معاشرے میں رہتے ہیں, لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو انسانوں کی طرح ہی ہینڈل کرنا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم پیسے سے کیوں ہاتھ لگائیں. نہیں, لگانا پڑے گا, استعمال کرنا پڑے گا, یہ استعمال کی چیز ہے. لیکن اس کو مقصد حیات نہ بنائیں. اس کو ضرورت کی ایک چیز ہے, استعمال کریں اور خوش ہوں, شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے کمانا ہے. آپ کما رہے ہیں, استعمال کریں. اللہ نے منع کیا, اسراف نہیں کریں, کنجوسی بھی نہیں کریں. دونوں چیزیں کہیں ہیں نا, کنجوسی سے بھی منع کیا, اسراف سے بھی منع کیا. جب آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو کہا کہ بھی طعام المساکین, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, تاکہ آپ میں صفت ربوبیت پیدا ہو, ابھرے. رب کسے کہتے ہیں؟ وسائل فراہم کرنے والے. ساتھ میں یاد رکھیں, لفظ تربیت میں بھی لفظ رب ہے, ہے یا نہیں؟
جی جی سر.
تو نشو نما دینے کے لیے وسائل, نشو نما کے لیے وسائل دینے والی ذات. اب بچے کی ماں اس کا رب نہیں ہے, کیونکہ اس کو دودھ کون پلا رہا ہے, اس کے پوتڑے کون بدل رہا ہے, اس کا خیال کون رکھتا ہے؟ ماں. تو امیجیٹلی, اسی لیے رب کی جمع ارباب ہے, ارباب قضاء و قدر. ہم پڑھتے ہیں نا لفظ ارباب.
جی سر.
یہ رب کی جمع ارباب ہے. میں نے حضور مرشد کریم سے جب پوچھا کہ جی رب کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا وسائل فراہم کرنے والی ذات. اب وہ انسان بھی ہو سکتا ہے, مادی زون میں, अल्लाह इंसानों को ही वसीला बनाता है ना।
बिल्कुल जी सर,
ठीक हो गया
जी सर, समझ गए।
ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जो आपने मुझसे बुलवा दिया कि जरे मुबादला से लेकर आज के तरक्की। अब ये देखे ना, अब हम बिटकॉइन पे आ गए, उसका वजूद ही कहीं नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल में एक हिंसा या एक शक्ल झिलमिला रही है, आप इसको कहते हैं ये बिटकॉइन है।
हाँ जी सर, ऐसे ही है।
क्या मतलब हुआ? ये सब इंसानी अकल के शाखसाने हैं, असल चीज है जरे मुबादला, क्योंकि हम इनके बदले में कुछ चीजें लेते हैं, कुछ चीजें देते हैं, हमने इसको मयार बना लिया अपनी सारी सोचों का। सारे लोग आजकल क्या है, दौलत की परस्तिश हो रही है। ये जो दौर है ये अल्लाह परस्ती का दौर तो है ही नहीं, दौलत की परस्तिश का दौर है। लोग एक दूसरे को किस बात पे मयार करते हैं, क्या मयार है उनका कि दौलत, इसके पास दौलत ज्यादा है ये बड़ा अच्छा आदमी है।
जी,
हमारे यहाँ इखलाकियात के बजाय दौलत मंदी जो है वो तो हम असल में किसकी पूजा कर रहे हैं? कोई कहता है ये अल्लाह वाला है इसलिए इसकी इज्जत कर रहे हैं, नहीं, वो तो ये देखते हैं कि भाई इसका घर कितना बड़ा है, इसके पास गाड़ी कितनी कीमती है, इसके जूते कितने कीमती हैं, इसने जो मोबाइल कौन सा है। अब ये आज से 20 साल पहले कहाँ था मोबाइल, कहीं था
नहीं सर।
मतलब है वो जो एक मोटा सा, एक इतना बड़ा सा वो स्टेटस सिंबल बन गया, वो वायरलेस टाइप की चीज होती थी, वो वहां से शुरुआत हुई और आज कितना सोफिस्टिकेटेड है, पूरा कंप्यूटर आपके इस मोबाइल में छुपा हुआ है। ये टीवी खा गया, रिकॉर्डर खा गया, वीसीआर खा गया, कैलेंडर खा गया, घड़ी खा गया, कितनी चीजें खा गया, टॉर्च खा गया। सब कुछ हैंडी हो गया ना, सब कुछ आपने वो सारी सहूलतें जो हैं वो एक जगह जमा कर ली
जी।
अब आप इसको सहूलत समझ के इस्तेमाल करें या इससे वक्त का ज्यां करते रहें। अब देखें ना, नॉर्मली क्या होता है, लोग मोबाइल लेते हैं, सारी दुनिया मोबाइलों में खोई हुई है, बच्चे से छोटे से बड़े तक। क्या हुआ कि फिक्र जो है वो अल्लाह के लिए दस्तयाब ही नहीं है, तो अल्लाह कहाँ से समझ आ जाएगा।
बेशक ऐसे ही है।
ठीक हो गया जी?
जी जी बिल्कुल सही समझ गए, बस ये दुनिया का ही है, लोगों का ही।
हाँ, तो जब तक आप यहाँ पे हैं आपको इसके साथ गुजारा करना है, यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो ना दें लेकिन इग्नोर भी ना करें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें नहीं जी मैं तो बस अब अल्लाह ही अल्लाह करूंगी, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। नहीं, अल्लाह ने यहाँ भेजा आपको, इन मराहिल से गुजरना है, ये सीखना है। हजूर कलंदर बाब औलिया का एक इरशाद सुन लें फिर ये मौजू खत्म करते हैं। उन्होंने फरमाया दौलत जो है ना ये सारा जहन का खेल, जितनी मर्जी कमा लो, जहन का इस्तेमाल है ना। अगर इफ यू कैन अप्लाई योर माइंड यू कैन अर्न मिलियंस एंड बिलियंस। अब बिल गेट क्या है? है उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, सलीका आता था उस बंदे को, लोगों को मतलब लोगों से दौलत वसूल करने का उसने कर लिया। अब उसने कंप्यूटर में क्या किया, एक विंडो बनाई ना, खिड़की बनाई, खिड़की उसकी इतनी बिकी कि बैया बैया हो गई। तो क्या है, जहन का इस्तेमाल है ना।
जी जी बिल्कुल।
आप और हम को ये दौलतमंद लोग कहते हैं मेहनत से कमाई होती है, मेहनत से अगर कमाई होती तो जो सड़क पे रूढ़ी कूटता है
जी
وہ تو سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے تھا.
جی بالکل.
تو محنت سے نہیں, یہ ذہن کا کھیل ہے. آپ ذہن اپلائی کر کے اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں, اللہ اس میں برکت جی. ڈال دیتا ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں, یہ تجربہ بن جاتا ہے. اور یہ دنیا میں جو بندہ کامیاب نہیں ہے وہ آخرت میں کیا کامیاب ہوگا؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ دنیا ایک گدھے کی مثال ہے, اور آپ نے شاہ سوار بننا ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ میں شاہ سواری سیکھوں گا. میں کہتا ہوں اچھا پہلے اس گدھے پہ بیٹھ کے دکھاؤ. آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو میری شان کے خلاف ہے. تو آپ گھوڑے پہ بیٹھ لیں گے؟ شاہ سوار بن سکیں گے؟ تو دنیا جو ہے یہ خر ہے, اور آپ خر کی سواری نہیں کر سکتے, اس سے کام نہیں لے سکتے, تو شاہ سوار کیا بنیں گے؟ گیم تو ہے اپنی صلاحیتوں کے استعمال کی. اللہ میاں نے آپ کو یہ 17 اسٹیشنز کا جو چکر دیا تخلیق کر کے ڈائریکٹ وہیں کیوں نہیں سب کچھ انسپائر کر دیا؟ نہیں, اللہ نے ایک پروسیجر بنایا تاکہ آپ اس میں سے گزر کے کچھ سیکھ کے اس کو پراپرلی اپریشیٹ کر سکیں. جب تک آپ سسٹم میں سے گزریں گے نہیں, آپ ایک کارخانے میں سے پورے ہر شعبے میں سے نہیں گزریں گے, آپ اپریز نہیں کر سکتے اس کو. آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ کارخانے میں جوتا بن رہا ہے, کیسے بن رہا ہے, اس کے پیچھے کتنا دماغ چاہیے, کتنے انگریڈینٹس ہیں, کتنے کمپوننٹس ہیں. مارکیٹنگ کا شعبہ ہے, سپلائی کا شعبہ ہے, پھر اس کے بعد پرچیز کا ایک شعبہ ہے, پھر مینوفیکچرنگ کا ایک شعبہ ہے, پھر اس کے بعد اسٹاک ہے, اسٹاک کو روکنا ہے, پھر آگے ڈسٹریبیوشن کا ایک سیٹ اپ ہے. یہ سارا نظام آپ کے ذہن میں کب واضح ہوگا؟ اب واضح نہیں ہے. تو جب اس میں سے گزریں گے, جب ہر ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا تھوڑا وقت آپ گزاریں گے اس لیے بچپن لڑکپن, نوجوانی, پھر جوانی, پھر اس کے بعد ادھیڑ عمری, یہ سارے مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ اب اللہ کا کارخانہ جو ہے, کہتے ہیں نا کارخانہ قدرت, اس پورے کارخانے کی تمام کمپوننٹس, اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے آگاہ ہو سکے. لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے, ہم اپنے آپ میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں, جسم سے ہی اتنے متعلق ہیں اور دنیا سے اتنے. قرآن نے یہ جو کہا واسر الحیات الدنیا, تم نے تو دنیا کی زندگی کا اثر لیا ہوا تھا, تمہارے پاس میرے لیے فرصت ہی نہیں تھی.
جی.
یہ قرآن کی آیت ہے نا تیسرے پارے میں, تو سے رون الحیات الدنیا, اور دوسری آیت ہے واسر الحیات الدنیا. ایک جگہ سنگولر ہے, ایک جگہ پلورل ہے.
جی.
تو دنیا کو استعمال کرنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑا مزے کا قانون بتا دیتا ہوں. حضور مرشد کریم نے ہمیں یہ کیسے سکھایا. ایک دفعہ ہم مراقبہ ہال میں کھڑے تھے, حضور اپنے کمرے سے نکلے اور واش روم کی طرف جا رہے تھے نہانے کے لیے. پہلے وہ تیل کی مالش کرتے ہیں, تو دھوتی باندھی ہوئی تھی اور وہ صدری کہتے ہیں اس کو نا, جو ڈھیلی سی وہ جیکٹ سی ہوتی ہے. تو وہ گزر رہے تھے, تولیہ بھی کندھے پہ ڈالا ہوا تھا, تو وہ اچانک رک گئے اور زمین پہ پڑے دو پتھر لیے انہوں نے, ایک بڑا اور ایک چھوٹا, اور چھوٹے پتھر کو ہلا کے کہا یہ فرد ہے, یہ انسان ہے, اور بڑے پتھر کو کہا یہ دنیا کی مثال ہے. اور پھر چھوٹے پتھر کو دنیا یعنی کہ بڑے پتھر کے ساتھ چپکا کے کہا کہ جب آدمی دنیا کی طرف رخ کر کے چلتا ہے, اب قانوناً یہ دونوں چپکے تو ہوئے ہیں لیکن بندہ دنیا کے اندر نہیں گھس سکتا, کیا ہوتا ہے پھر دنیا آگے آگے بھاگتی ہے. جب اسے چھوٹے پتھر کو زور دیا تو وہ بڑا پتھر کھسکنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کو الٹا کیا اور کہا اب اگر انسان اپنا رخ بدل لے تو جب وہ چلے گا تو چونکہ دنیا قانوناً اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, وہ اس کے پیچھے آئے گی.
جی.
کتنا بڑا قانون بیان ہوا کہ دنیا کی طرف زور نہیں لگانا, آپ نے اپنا زور اللہ کی طرف لگانا, دنیا خود بخود پیچھے آئے گی, آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. کہ آپ اس کو استعمال کریں اور خوش ہوں. بس یہ ہے سارا نظام. ٹھیک ہو گیا؟
بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر.
میں کوئی زیادہ بول گیا معافی چاہتا ہوں. بس سوال کم ہو گئے.
نہیں سر نہیں سر, بہت ڈیپ بہت ڈیپ اور بہت چیزیں واضح ہو گئی.
آپ نے سوال ایسا کیا کہ یہ سارے سوچ کے تانے بانے مجھے سلجھانے ضروری تھے, اس لیے میں نے یہ باتیں عرض کی آپ سے. ٹھیک ہو گیا؟
بالکل سر. جی سر جی, تھینک یو سو مچ.
یو آر ویلکم. اور کسی کا کوئی سوال ہے یا؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
جی وہی اور الہام کو ایکسپلین کرنا پلیز.
فلہامہا فجورہا و تقوہا, یہ آج سنی آپ نے؟
جی.
کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی طرف سے جو خیال انسپائر کیے جاتے ہیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانے کے لیے, اس کو الہام کہتے ہیں.
جی.
یعنی کسی بات کی فہم عطا کرنے کے لیے جو اللہ ہر ایک کو جو خیال منتقل کرتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے. جب یہ ایک پراپر میسج ہو اور وہ اپنے کسی خاص بندے انبیاء کرام کے لیے خاص طور پہ مختص کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ جب یہ کسی نبی کی طرف وہی بات کو, چونکہ وہ آگے صرف اس بندے کی پرسنل نہیں ہوتی, وہ آگے اس نے میسج کنوے کرنا ہوتا ہے, اس کو وہی کہا گیا. ٹھیک ہے؟ وہی ہو یا الہام ہو, دونوں اطلاعیں اللہ ہی کی طرف سے, صرف وہ ذرا وایا میڈیا کا فرق آ گیا. ورنہ تو اللہ نے کہا میں شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہوں, زمین کہے گی وہ ماں اوہا, مجھے وہی کی گئی, جب وہ اپنا سارا بوجھ نکال دے گی. یعنی سکرین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ وحی پہ ہو. وحی کا الہام کا مطلب دونوں کا اللہ کی طرف سے اطلاع کو کہتے ہیں. جب بندے کا ذہن اللہ کے ساتھ واصل ہو, وابستہ ہو, جڑا ہوا ہو, تو وہ جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں الہامی تحریر بن جاتی ہے, جیسے لوح قلم. اس لیے اس کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو چونکہ یہ الہام کی تحریر ہے تو ہمارا ذہن بھی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا. اور جب ہم اس کتاب کو سمجھ لیں گے تو ہمارا ذہن شعور سے نکل کر الہام کو سمجھنے کے بعد پھر وحی کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گا, اور وحی جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟
وحی.
اور اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایک الہامی تحریر ہے. اس کے دباچے میں حضور مرشد کریم نے کیا لکھا, یوں یہ الہامی تحریر کتاب لوح قلم بن گئی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں خوش رہیے اور اپنا خیال رکھیے. آپ کو ایک دفعہ پھر عید میلاد النبی بہت مبارک ہو, جمعہ بھی مبارک ہو, اللہ خوش رکھے. بہت نواز, بہت نواز. اللہ حافظ. اللہ حافظ.